पाठ 10 अध्याय 8 और 9। मैं उन सभी गलत समझे गए या गलत तरीके से समझे गए सिद्धांतों के बारे में सोचता हूं जो हमें बाइबल में मिलते हैं, खासकर ईसाइयों और आधुनिक यहूदी धर्म द्वारा। फिर भी एक ऐसा सिद्धांत जो परमेश्वर के अनुयायियों के लिए बहुत जरूरी है, सबसे ऊपर प्रायश्चित का विचार होना चाहिए जो इब्रानी मूल शब्द किप्पुर में व्यक्त किया गया है। हमने पिछले सप्ताह के पाठ का समापन इस शब्द और इसके एक या दो उपशब्दों जैसे कोफर और कप्पाराह पर चर्चा करके किया था। मैं उस विचार को संक्षेप में फिर से जीवित करना चाहूंगा, क्योंकि जैसा कि हमने सीखा है बाइबल के लेखकों के दिमाग में क्या था और जिस संस्कृति में वे रहते थे, एक प्राचीन इब्रानी संस्कृति, वह आधुनिक विचार से इतनी दूर है कि इसे समझना तो दूर की बात है, इसे समझना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है अगर हमें वह सच्ची समझ प्राप्त करनी है जो प्रभु चाहते हैं कि हम उनके नियमों और उनकी योजनाओं के बारे में प्राप्त करें। किसी व्यक्ति को किसी देवता, इज़राइल के ईश्वर सहित के क्रोध से छुड़ाने की धारणा प्राचीन संस्कृति में प्रचलित थी और यह बाइबल में भी उतनी ही प्रचलित है, कभी भी अन्यथा न सोचे। चर्च ने विशेष रूप से, लेकिन यहूदी धर्म ने भी इस विषय पर पवित्र शास्त्र के शब्दों के साथ हमारे 21वीं सदी के दिमाग को सामंजस्य स्थापित करने के लिए सभी प्रकार की रूपक चालें आजमाई हैं और इस प्रकार प्रभावी रूप से उस प्रभाव को कम कर दिया है जो हमें पड़ना चाहिए था। हम आम तौर पर शाब्दिक अवधारणा को अपनी आधुनिक संवेदनाओं के लिए बहुत आदिम पाते हैं, इसलिए हम इसे तब तक तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं जब तक कि यह हमारे लिए सहज ना हो जाए। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर हम एक टाइम मशीन में प्रवेश करें और राजा दाऊद के युग में वापस जाएं और उन्हें बताएं कि हमारे आधुनिक समझ में प्रायश्चित और मुक्ति का क्या अर्थ है, तो यह उनके लिए पहचानना मुश्किल होगा। नीति वचन कई पुस्तकों में से एक है जहां हमें फिरौती के मूल ईश्वर सिद्धांत और इसके अपूर्णीय उद्देश्य के बारे में यह विचार मिलता है। नीति वचन 21 का 18 दुष्ट लोग धर्मी की छुरौती का कारण बनते हैं और वैसे ही विश्वासघाती लोग सीधे लोगों की छुरौती का कारण बनते हैं। यह मेरी बात को समझाने के लिए एक बेहतरीन बाइबल कथन है। यह अंश शाब्दिक रूप से कहता है कि दुष्ट लोगों, अर्थात जो इज़राइल के परमेश्वर को अस्वीकार करते हैं कि जीवन का अंत यहोवा को प्रसन्न करने के लिए एक स्वीकार्य भुगतान है, ताकि धर्मी लोग, अर्थात जो इज़राइल के परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं, अपने पापों के लिए क्षमा प्राप्त करें। यह एक ऐसा आदान प्रदान है जिसे परमेश्वर ने तय किया है कि वह उसे संतुष्ट करेगा। कृपया ध्यान दें, हम धर्मी लोगों द्वारा दुष्टों को मारने और फिर उन्हें परमेश्वर को अर्पित करने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि परमेश्वर द्वारा दुष्टों पर अपने क्रोध को जिस भी तरीके से निर्धारित किया जाता है निकालने की बात कर रहे हैं। मैं इसे दूसरे तरीके से कहता हूं, यह मनुष्यों द्वारा मनुष्यों पर किया गया कार्य नहीं है, बल्कि परमेश्वर द्वारा मनुष्यों पर किया गया कार्य है। इसके विपरीत मानक शिक्षा के बावजूद परमेश्वर का कोई भी सिद्धांत ऐसा नहीं है जो अस्तित्व में नहीं रहा हो या बदल गया हो। इस प्रकार परमेश्वर द्वारा स्वाभाविक रूप से अपेक्षित न्याय को संतुष्ट करने के तरीके के रूप में फिरौती के केंद्रीय स्थान को अनदेखा नहीं किया जा सकता है या किसी प्रकार का अप्रचलित ईश्वरीय प्रोटोकॉल नहीं बनाया जा सकता है। यह केवल अधिक आदिम समय के लिए था। लैव्य व्यवस्था 17:11, क्योंकि प्राणी का प्राण उसके रक्त में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण रक्त ही से प्रायश्चित होता है। यह ईश्वर का स्वभाव है कि वह यह स्वीकार नहीं कर सकता कि उसने जो बनाया है उसे उसके धर्मी क्रोध के अधीन किए बिना मारा जा सकता है। कृपया मेरी बात सुने, जैसा कि हम ये कहना पसंद करते हैं कि ईश्वर झूठ नहीं बोल सकता, न ही वह अपने किसी प्राणी की मृत्यु से क्रोधित हो सकता है। जब मैं कहता हूं कि नहीं कर सकता, तो मेरा मतलब है कि नहीं कर सकता।
जिस तरह ईश्वर झूठ बोलने में सक्षम नहीं है, उसी तरह वह खून के बहाव पर क्रोधित न होने में भी असमर्थ है। यह ईश्वर की सीमा या ईश्वर की पसंद का मामला नहीं है जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूं, बल्कि यह उसका सार और उसका चरित्र है जो उसे वह बनाता है जो वह है।
इस प्रकार ईश्वर का सिद्धांत है कि उसके एक प्राणी को दूसरे प्राणी की मृत्यु के लिए हमेशा भुगतान करना होगा। यह कई तरीकों से परिलक्षित होता है। उदाहरण के लिए, जब पाप करने की बात आती है, परमेश्वर के खिलाफ अपराध, तो दोषी पक्ष के अपराध की कीमत किसी निर्दोष पक्ष को चुकानी होगी यदि उसे माफ किया जाना है, अन्यथा दोषी पक्ष का खून उसके अपने सिर पर होगा और ईश्वर का गुस्सा तभी शांत होगा जब उस दोषी पक्ष की जान ले ली जाए और माफी न दी जाए। इस प्रकार बलि प्रथा में एक निर्दोष पशु को फिरौती के रूप में मारा जाता है, जिसका भुगतान इसलिए किया जाता है ताकि दोषी व्यक्ति की जान ईश्वर द्वारा बख्श दी जाए। बिना किसी अपवाद के हर मामले में ऐसा करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि ईश्वर इतना पवित्र और इतना परिपूर्ण है कि वह एक भी उदाहरण को अनदेखा नहीं कर सकता, अन्यथा उसका धार्मिक क्रोध शांत नहीं होगा और उसकी पवित्रता अपवित्र नहीं होगी, और ऐसी बात बिल्कुल भी संभव नहीं है।
जब भोजन के लिए किसी पशु को मारने और काटने की बात आती है, तो उस पशु का रक्त मनुष्य के हाथों हुई उस पशु की मृत्यु के बदले में छुरौती के रूप में परमेश्वर को लौटाया जाना चाहिए। यह परमेश्वर के किसी प्राणी की हत्या के कारण उत्पन्न हुए क्रोध को शांत करने का कार्य है, चाहे वह वैध या अवैध हत्या हो।
इसीलिए यह जरूरी है कि हम देखें कि प्रायश्चित शब्द जो पूरे बाइबल में बुना गया है और यहूदी ईसाई धर्म के भीतर इतना आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, उसके कई अर्थ हैं। अलग अलग स्थितियों के लिए अलग अलग अर्थ नहीं, बल्कि प्रायश्चित का एक ब्रह्मांडीय रूप से जटिल अर्थ है जिसमें कई पहलू एकीकृत हैं। अपने सरलतम रूप में प्रायश्चित का अर्थ है एक भुगतान, एक फिरौती, एक प्रतिस्थापन, एक पवित्र ईश्वर की एक उचित आवश्यकता जिसके लिए कोई और नहीं कर सकता। यह भुगतान किसको जाता है? परमेश्वर को। यह उनके पास क्यों जाता है? क्योंकि उनके धार्मिक क्रोध को शांत किया जाना चाहिए और उन्होंने तय किया है कि इससे उन्हें संतुष्टि मिलेगी। इसके अलावा कोई और विकल्प या संभावना नहीं है। किसे लाभ होगा? उनके उपासकों को। अब आइए किप्पुर के इसी ईश्वर सिद्धांत को एक अन्य परिदृश्य में क्रियान्वित होते देखें। मुक्ति, गिनती 8-16-18 दोबारा पर है। यह पीछे देखने और कुछ मिनटों के लिए समीक्षा करने का एक बढ़िया अवसर है। यहोवा हमें याद दिलाता है कि मुक्ति एक महंगी चीज है। यह केवल एक कीमत के साथ हो सकता है, एक फिरौती का भुगतान किया जाना। जब उसने मिस्र के हाथ से इज़राइल को छुड़ाने का निश्चय किया, तो छुटकारे की कीमत यह थी कि सभी पहलौठे उसकी पवित्र संपत्ति बन जाए। न केवल इज़राइल के सभी पहलौठे, बल्कि सभी पहलौठे मिस्र के भी। इन पहलौठों को अन्य सभी लोगों के लिए बलिदान के रूप में नामित किया गया था। इसलिए जब इज़राइल के मिस्र छोड़ने का समय आया, तो परमेश्वर ने अपने चिन्ह को बुलाया। सभी पहलौठे लोगों और मवेशियों के, मिस्र और इज़राइल के सचमुच बलिदान किए जाएंगे, मारे जाएंगे इज़राइल को गुलामी से छुड़ाने की कीमत चुकाने के लिए। हालांकि भले ही सभी पहलौठे अब परमेश्वर के थे और प्रायश्चित के बलिदान के रूप में चिन्हित किए गए थे, वह उन पहलौठों की बलि नहीं देगा जिन्होंने उस पर इतना भरोसा किया कि उसके प्रावधान का पालन किया कि हर घर को एक मेमने का वध करना था और फिर उस मेमने के खून को अपने घरों के दरवाजे की चौखटों पर रंगना था। दूसरे शब्दों में, वह मेमना उन सभी पहलौठों के लिए भुगतान होना था जिन्हें बलि के रूप में बलि चढ़ाया जाना था। बेशक हम इस घटना को फसह के रूप में जानते हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि इज़राइल के अधिकांश लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया और इसलिए इज़राइलियों के ज्येष्ठ पुत्रों को बचा लिया गया। लेकिन मिस्र के अधिकांश लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया और इसलिए मिस्र के ज्येष्ठ पुत्रों को फिरौती के रूप में मार दिया गया। जैसा कि नीति वचन 21 में कहा गया है, दुष्ट लोग धर्मी लोगों के लिए फिरौती थे, परमेश्वर की एक अपरिवर्तनीय आवश्यकता। अब जबकि इसराइल मिस्र से बच निकला था, इसराइल के ज्येष्ठ पुत्र अभी भी खतरे से बाहर नहीं थे, वे अभी भी परमेश्वर की पवित्र संपत्ति थे। उन्हें परमेश्वर की सेवा करने के लिए जीवन भर का अर्णी होना था। इसलिए यहोवा ने अपनी दया में यह निर्णय लिया कि लेवियों को इन सभी इसराइली पहलौठों के लिए प्रतिस्थापन छुरौती बनना होगा। सभी इसराइली पहलौठों को परमेश्वर की पवित्र संपत्ति होने के बजाय परमेश्वर की सेवा के अधीन, अब लेवियों को उनके स्थान पर परमेश्वर की पवित्र संपत्ति होना चाहिए और पहलौठों को परमेश्वर के प्रति अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहिए। यही कारण है कि जिस जनगणना के बारे में हम पहले गिनती में पढ़ते हैं वह इतनी सावधानी से की गई थी। याद कीजिए कि प्रत्येक इसराइली ज्येष्ठ पुत्र के लिए एक एक करके प्रतिस्थापन के लिए उपलब्ध लेवी पुरुषों की गिनती आवश्यक गिनती से कम थी। इसलिए जिन इसराइली ज्येष्ठ पुत्रों के पास उन्हें छुड़ाने के लिए कोई लेवी नहीं था, उन्हें अपने छुटकारे के लिए पुरोहित वर्ग को पैसे देने पड़े। मोचन की एक ठोस कीमत होती है, लेकिन चूंकि परमेश्वर को रक्त बलिदान की आवश्यकता है, जिसका भुगतान मिस्र के ज्येष्ठ पुत्रों ने इसराइल के छुटकारे के लिए किया था, यह आवश्यकता अभी भी इसराइल के ज्येष्ठ पुत्रों पर थी, जिन्होंने अब उस बोझ को अपने कंधों से उतारकर परमेश्वर के निर्देशों के अनुसार लेवियों पर डाल दिया, जिन्होंने फिर आवश्यकता के रक्त बलिदान वाले हिस्से को बलि चढ़ाने वाले बैलों पर डाल दिया। इसलिए हम प्रतिस्थापन की इस लंबी श्रृंखला को स्थापित होते हुए देखते हैं। एक तरह से यह आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश है। आखिरकार सारा भार यीशु के कंधों पर आ गया। वह प्रायश्चित के लिए अंतिम और सर्वोत्तम विकल्प था। वह या तो रक्त प्रायश्चित बलिदान स्वीकार कर सकता था जैसा कि उसने किया, या वह इसे किसी जानवर पर रख सकता था जैसा कि मनुष्य हमेशा करते आए हैं, और यह चक्र बस चलता रहता। यह तोरह ही है जो रक्त बलिदान के माध्यम से छुटकारे के लिए परमेश्वर की आवश्यकताओं को सावधानी पूर्वक स्थापित करता है, और यह भी स्थापित करता है कि उसका न्याय एक अधिकृत विकल्प के रूप में फिरौती के साथ संतुष्ट हो सकता है, जो हम में से प्रत्येक का सही रूप से उसके प्रति अर्ण है। अध्याय 8 की अंतिम कुछ आयतें केवल यही दोहराती हैं कि जो लेवीय भारी काम करते हैं उन्हें 50 वर्ष की आयु में उस भारी काम से मुक्त कर दिया जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्हें सेवा से छूट दे दी जाती है। वे मंदिर के रक्षक और चौकीदार बन गए और अन्य प्रकार के काम भी करने लगे जिससे वृद्ध व्यक्ति पर अधिक बोझ न पड़े। अब हम दूसरे फसह की जांच करेंगे। पहला फसह इसराइल के मिस्र छोड़ने से एक रात पहले हुआ था। आइए गिनती अध्याय 9 पर चलते हैं। अध्याय 9 और 10 में इसराइल की यात्रा की सभी अंतिम तैयारियों को दर्ज किया गया है, जो अब मिस्र से मुक्त और छुड़ाए गए हैं, जो परमेश्वर के पवित्र स्थान से सुसज्जित हैं और परमेश्वर के नियमों और आदेशों के साथ तैयार हैं, जब वे प्रतिज्ञा किए गए देश के लिए निकल पड़े। यहोवा ने अब्राहम के साथ जो वाचा बांधी थी उसे 600 वर्ष बीत चुके हैं और अलग किए गए लोगों के रहने के लिए एक स्थान निश्चित किया गया है, और उस स्थान को उस समय कनान देश कहा जाता था, परंतु निकट भविष्य में इसका नाम बदलकर इसराइल रखा जाएगा। आइए हम सब मिलकर गिनती अध्याय 9 पढ़ें।
गिनती अध्याय 9 सभी पढ़ें।
अध्याय 9 में सबसे पहले जिस चीज के बारे में बात की गई है वह है फसह, इब्रानी में पेसाच। यह इसराइल द्वारा मनाया जाने वाला दूसरा फसह है, और इस फसह को मनाने के तरीके में पहले फसह की तुलना में एक अलग अंतर है। आइए याद करें कि पहला फसह मिस्र में मनाया गया था। यह वह महान और भयानक रात थी जब प्रभु ने मिस्र में सभी असुरक्षित पहलौठों को मार डाला था। केवल वे पहलौठे बच गए थे जिन्होंने मूसा के निर्देशों का पालन किया था कि उन्हें एक साल के नर मेमने को मारना था, उसे खाना था और उसके खून को अपने मिट्टी ईंट के घरों के चौखटों पर फैलाना था। अब यह समझना एक महत्वपूर्ण ईश्वर सिद्धांत है कि जबकि यह निर्देश मुख्य रूप से इसराइल को लक्षित था, मिस्र में रहने वाला कोई भी परिवार, चाहे उनकी राष्ट्रीयता कोई भी हो जो यहोवा की पूजा करता था और इस आज्ञा का पालन करता था और उसका पालन करता था, उसे मृत्यु द्वारा पारित कर दिया गया था। कोई भी परिवार जिसका नेतृत्व एक खतना किए हुए पुरुष ने इसराइल में शामिल होने के संकेत के रूप में किया था, चाहे उनकी राष्ट्रीयता कोई भी हो, भाग ले सकता था और कई लोगों ने भाग लिया। परिणाम स्वरूप हम निर्गमन में देखते हैं कि एक मिश्रित भीड़ ने मिस्र छोड़ दिया और इसराइल के साथ यात्रा की। कुछ लोग जो आधिकारिक तौर पर इसराइल में शामिल हो गए, जबकि अन्य ऐसे सहयात्री के रूप में आए जो कभी इसराइल में शामिल नहीं हुए। संभवतः उन्होंने अपने पहले जन्मे बच्चे को खो दिया था और इस ईश्वर की शक्ति से भयभीत थे और इसलिए वे इसराइल के बीच रहना चाहते थे और ऐसे ईश्वर के लाभों का आनंद लेना चाहते थे। इसलिए तीन श्रेणियों के लोगों ने मिस्र छोड़ दिया। एक, प्राकृतिक रूप से जन्मे इसराइली इब्रानी। दो, अन्य राष्ट्रीयताओं के लोग जो आधिकारिक रूप से इसराइली बनना चाहते थे। और तीन, वे जो इसराइली बनने का इरादा नहीं रखते थे लेकिन बस इसराइल के बीच रहना चाहते थे विभिन्न कारणों से, जबकि वे जो भी राष्ट्रीय पहचान रखते थे उसे बनाए रखना चाहते थे। बाइबल आमतौर पर उन लोगों को संदर्भित करती है जो प्राकृतिक रूप से पैदा हुए इसराइली नहीं थे लेकिन इसराइली बनना चाहते थे अप्रवासी के रूप में, और यह उन सहयात्रियों के लिए अलग और विशिष्ट है जिन्हें अजनबी या निवासी विदेशी कहा जाता है। ये दूसरा फसह जिसे हम यहां गिनती 9 में देखते हैं। यदि आप चाहें तो मिस्र के फसह का पहला स्मरणोत्सव है और यहां से आगे सभी फसह मिस्र में पहले फसह का स्मरणोत्सव होंगे। दूसरे शब्दों में पहला फसह वास्तविक ऐतिहासिक घटना थी और उसके बाद हर फसह बस इसकी याद दिलाता था।
अब पहले फसह जैसा कि मिस्र में हुआ और दूसरे फसह के बीच मुख्य अंतर यह है कि फसह जंगल में का अर्थ है कि इन दोनों के बीच तोरह कानून इसराइल को उनके पलायन के आरंभ में माउंट सिनाई पर दिया गया था। इसके अलावा इसराइल के बीच परमेश्वर के निवास के लिए एक स्थान तंबू का निर्माण किया गया था। परिणाम स्वरूप फसह मेमने का चरित्र और स्वभाव भी कुछ हद तक बदल गया।
पहले फसह में प्रत्येक व्यक्तिगत परिवार ने अपने घर में अपने मेमने का वध किया, क्योंकि ऐसा करने के लिए कोई सामान्य स्थान या पुजारी नहीं था। इसके अलावा जबकि उस पहले फसह के मेमने की बलि दी गई थी, एक दिव्य उद्देश्य के लिए मारा गया था। यह एक औपचारिक बलिदान नहीं था जैसा कि नए सांचे में लैव्य व्यवस्था में निर्धारित किया जाएगा। कानून दिए जाने के साथ सभी बलिदानों की देखरेख इसराइल के पुजारियों द्वारा की जानी थी। मुझे कोई संदेह नहीं है कि यह इसराइल के वे ज्येष्ठ पुत्र थे जिन्हें उनके घरों के दरवाजों पर खून से रंगकर मृत्यु के लिए पारित किया जाने वाला था, जिन्होंने उस पहले फसह में मेमने का वध किया था, लेकिन भविष्य में उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और हमने हाल ही में इस बात पर चर्चा की थी कि जब तक माउंट सिनाई पर लेवी पुरोहिताई की स्थापना नहीं हुई थी, जो कि प्रथम फसह के लगभग एक वर्ष बाद हुआ था, यह परंपरागत था कि ज्येष्ठ पुत्र प्रत्येक इसराइली परिवार में पुरोहितों की तरह कार्य करते थे। अतः चूंकि मेमने का वध एक ईश्वरीय आदेश था, इसलिए मेमने को मारने का दायित्व ज्येष्ठ पुत्र पर ही आता था। यहां बहुत सारे प्रतीक हैं, है ना? यह ज्येष्ठ पुत्रों का जीवन था जिसे परमेश्वर ने धमकी दी थी, इसलिए यह ज्येष्ठ पुत्र ही थे जिन्होंने मेमने को मारा और खून लगाया। कभी कभी हमें पहले फसह के बारे में गलत धारणा हो जाती है। यह सभी इसराइलियों के शारीरिक जीवन को मृत्यु से बचाने के लिए नहीं था। महिलाएं और गैर ज्येष्ठ पुत्र परमेश्वर की मृत्यु की धमकी के अधीन नहीं थे। उसका क्रोध केवल ज्येष्ठ पुत्रों पर ही बरसने वाला था, क्योंकि यह ज्येष्ठ पुत्र ही थे जिन्हें उसने अब अपना घोषित किया था और वह अपने लोगों को बचाने के लिए उन्हें बलिदान करने के लिए तैयार था, ऐसा कहा जाता है। उन ज्येष्ठ पुत्रों की हत्या इसराइल के लिए छुटकारे की कीमत थी जिससे उसका न्याय संतुष्ट हुआ। इसलिए यह प्रत्येक व्यक्ति था जो निंदा के अधीन था। मिस्र में इसका मतलब था ज्येष्ठ पुत्र जिसे मेमने का वध करना था और उसके रक्त के उन बचाव गुणों को ग्रहण करना था।
क्या आप इसे देखते हैं? ज्येष्ठ पुत्र जिसने मेमने का वध किया था वह उसे अपने लिए ग्रहण कर रहा था। अब अंत में यह उसके परिवार को मिस्र की गुलामी से मुक्त कर देता है, लेकिन यह परिवार के अन्य सदस्यों के शारीरिक जीवन को बचाने के बारे में नहीं था, क्योंकि उनके शारीरिक जीवन वास्तव में खतरे में नहीं थे। आज भी मानव जाति के लिए यह बिल्कुल वैसा ही है। निंदा के अधीन प्रत्येक व्यक्ति, जो कि प्रत्येक मनुष्य है, को बलिदान के रक्त को अपने लिए ग्रहण करना चाहिए। चाहे मैं इसे जितना भी पसंद करूं, मैं अपने भाई या बहन, माता या पिता, बच्चों या नाती नातिनों के लिए यीशु के रक्त को ग्रहण नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वतंत्र इच्छा और कार्य द्वारा एक एक करके मुक्ति मिलनी चाहिए। फिर भी एक घर के भीतर एक व्यक्ति जो यीशु के बलिदान के रक्त को ग्रहण करता है, वह अपने परिवार को रास्ता दिखाकर बचने का एक रास्ता खोलता है। फिर भी प्रत्येक परिवार के सदस्य को अब जाकर अपने लिए यीशु की बचाने वाली शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। अब इस दूसरे फसह में फसह मेमने को चुना जाना चाहिए और उसे तंबू, बाद में मंदिर में ले जाना चाहिए, जहां पुजारी उसके वध का कार्य करेंगे। मेमने का एक हिस्सा, हर मेमना, परमेश्वर को होम बलि की आधिकारिक वेदी पर चढ़ाया जाना चाहिए। फिर कुछ खून को घर वापस ले जाना चाहिए और अपने घर के प्रवेश द्वार पर लगाना चाहिए।
प्रथम फसह में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वहां कोई औपचारिक तोरहा नहीं था, कोई आधिकारिक पुरोहिताई नहीं थी और कोई तंबू नहीं था। जैसा कि लेव्य व्यवस्था में निर्धारित किया गया था, फसह का पर्व 14वें दिन मनाया जाना था। यह नियम यहां गिनती 9:3 में दोहराया गया है। साथ ही यह नियम भी है कि तंबू में मेमने का बलिदान इब्रानी में बे इन हारबाइम में होना चाहिए। इसका शाब्दिक अर्थ है दो शामों के बीच। तो यह वास्तव में कब है? खैर, अधिकांश प्राचीन रब्बियों ने निर्धारित किया कि यह सूर्यास्त और पूर्ण अंधकार के बीच था। बाद में यह निर्धारित किया गया कि इसका अर्थ दोपहर 3 बजे और पूर्ण अंधकार के समय के बीच है।
याद रखें कि इब्रानी दिन शाम को शुरू और खत्म होता है, न कि सुबह में, जैसा कि आज गैर यहूदियों के बीच होता है। अधिक विशेष रूप से यह अंधेरे में नहीं होता है कि दिन खत्म हो जाता है, बल्कि तब होता है जब सूरज की आखिरी धार क्षितिज पर गायब हो जाती है। और भी अधिक विशेष रूप से यह तब होता है जब आकाश में 3 तारे दिखाई देते हैं, तब वर्तमान दिन समाप्त होता है और नया दिन शुरू होता है।
स्पष्टतः सूर्यास्त और पूर्ण अंधकार के बीच के कुछ मिनट के अंतराल में हजारों मेमनों का वध करना पुजारियों के लिए मानवीय दृष्टि से असंभव था।
अतः यह समझा जा सकता है कि मेमनों का वध दोपहर 3 बजे शुरू करने की घोषणा का क्या कारण था।
अब दिलचस्प बात यह है कि यहां मज्जा के पर्व का कोई जिक्र नहीं है। यह अखमीरी रोटी का पर्व है। यह पर्व फसह के अगले दिन शुरू होना चाहिए और इन अंशों के समय से हम जान सकते हैं कि फसह 14 तारीख को हुआ था और इज़राइल 20 तारीख को माउंट सिनाई से जंगल की ओर अपनी यात्रा पर निकल पड़े थे। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वे मज्जा के पर्व के बीच में ही चले जाएं।
मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जैसा कि परमेश्वर ने लेव्य व्यवस्था में आदेश दिया था, फसह और मातजा, हालांकि दोनों जुड़े हुए थे, दो अलग अलग अनुष्ठान थे। ये केवल बाद के समय में ही था कि वे इतने घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे कि उन्हें एक संयुक्त पर्व के रूप में देखा जाने लगा। आज भी उस समय की अवधि को फसह कहना आम बात है, जिसमें पहला फसह और फिर अखमीरी रोटी का पर्व शामिल है, बस फसह। कुछ लोग संयुक्त दो पर्वों को केवल मातजा कहना पसंद करते हैं। आज कई यहूदी फसह को मातजा का पहला दिन मानते हैं, हालांकि यह तोरह के आदेशों के अनुसार सही नहीं है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है कि उन्हें अपना सामान समेट कर जाने से पहले फसह का पर्व मनाना था। इसमें एक जानवर की बलि देना शामिल था। मातजा में बलि का कोई तत्व नहीं था। केवल एक ही आवश्यकता थी कि अपने घर से सभी खमीर को साफ किया जाए। खमीर और पर्व के 7 दिनों की अवधि के दौरान अखमीरी रोटी मातजा खाया जाए। इसीलिए जबकि पैसाज के उचित पालन के लिए तंबू आवश्यक था, क्योंकि पुजारियों की उपस्थिति में एक मेमने की बलि दी जानी थी, लेकिन मात्जा के 7 दिनों के पर्व को मनाने के लिए तंबू आवश्यक नहीं था। वास्तव में मत्जा के पर्व को मनाने के लिए किसी को धार्मिक रूप से शुद्ध होने की भी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि कोई बलिदान निर्धारित नहीं था। पद 6 में एक ऐसी परिस्थिति का जिक्र है जिसमें कुछ इसराइली मूसा के पास आए और उन्होंने कहा, हमारे पास एक समस्या है। और समस्या यह थी कि कुछ इसराइली इसलिए अशुद्ध हो गए थे क्योंकि उन्होंने एक मृत शरीर को छुआ था, इब्रानी में उन्हें तमीले नेफेश। लेकिन चूंकि दूसरे फसह का केंद्र बिंदु तंबू में मेमने का बलिदान था, और क्योंकि व्यवस्था ने किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो गंभीर रूप से अशुद्ध था अपने बलिदान के साथ परमेश्वर के पवित्र स्थान के पास जाने की अनुमति नहीं दी थी, तो उन लोगों के बारे में क्या जो वर्तमान में अशुद्ध थे?
क्या उन्हें अभी भी फसह में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी? जिन लोगों ने मूसा से यह सवाल पूछा था वे निश्चित रूप से यही उम्मीद कर रहे थे। इसलिए मूसा इस मामले पर परमेश्वर के साथ विचार विमर्श करता है और परमेश्वर अपना आदेश जारी करता है, नहीं वे भाग नहीं ले सकते। हालांकि अगले महीने की 14 तारीख को यह मानते हुए कि कोई व्यक्ति अब अनुष्ठानिक अशुद्धता की स्थिति में नहीं है, वे पेशाच मना सकते हैं। और पद 11 कहता है कि वे फसह के मेमने को करवी जड़ी बूटियों और अखमीरी रोटी के साथ खाएंगे, लेकिन वे इसमें से कुछ भी सुबह तक नहीं छोड़ेंगे, नाश्ते के लिए कोई बचा हुआ नहीं, और वे मेमने की हड्डी नहीं तोड़ेंगे।
इस पूरी प्रक्रिया में एक और तत्व है जो काफी दिलचस्प है। इसमें कहा गया है कि जो लोग धार्मिक रूप से शुद्ध नहीं हैं, उन्हें फसह मनाने के लिए एक मेकअप तिथि दी जाती है जो अगले महीने की 14 तारीख धार्मिक कैलेंडर वर्ष का दूसरा महीना है। इसके अलावा जो लोग लंबी यात्रा पर हैं वे फसह के निर्धारित निशान 14 को एक महीने के लिए स्थगित भी कर सकते हैं, लेकिन यह अपवाद केवल उन 2 स्थितियों के लिए है। पर 13 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति फसह का पर्व उस समय जहां और जिस तरह से मनाया जाता है नहीं मनाता है और उन 2 विशेष शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो वह व्यक्ति अपने परिजनों से अलग हो सकता है। दूसरे शब्दों में वह व्यक्ति ईश्वर से अलग होने के अधीन है। इसके अलावा पद 14 उत्पत्ति में निर्धारित सिद्धांत को और मजबूत करता है कि इसराइल में सभी के लिए एक ही कानून है, चाहे वे इब्रानी हो या विदेशी। दूसरे शब्दों में अन्य राष्ट्रीयताओं के वे लोग जिन्होंने इसराइल के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट की है, जिससे वे इसराइली बन गए हैं, वे स्वाभाविक इसराइलियों के साथ एक ही नाव में सवार हैं, सभी तोरह उन पर लागू होते हैं और वे समान आवश्यकताओं और समान आशीर्वाद और समान शापों के अधीन हैं स्वाभाविक रूप से, क्योंकि जो लोग इसराइल के परमेश्वर के अनुयायी बनना चाहते हैं उन्हें उसी वाचा के तहत काम करना चाहिए। इसके अलावा यहां तक कि निवासी विदेशी जो इसराइली नहीं हैं और इसराइली नहीं बनना चाहते लेकिन इसराइल के साथ रहना चाहते हैं को पेशाच फसह का पालन करना आवश्यक है। अब जैसा कि कल्पना करना बहुत कठिन नहीं है, अंततः इस बात पर काफी बहस हुई कि परमेश्वर द्वारा यह कहने का क्या मतलब था कि लंबी यात्रा पर जाने वाला व्यक्ति फसह का पर्व मनाने और तंबू में अपना बलिदान चढ़ाने को 30 दिनों के लिए स्थगित कर सकता है। आखिर कितना लंबा समय है? लंबा। संक्षेप में सवाल यह था कि निशान 14 के आने पर कोई व्यक्ति तंबू से कितनी दूर था और इसलिए उसे अपने घर से कितनी दूर यात्रा करनी पड़ती थी ताकि वह तंबू तक पहुंच सके, बाद में मंदिर पेशाच के लिए, और बेशक विभिन्न रब्बियों ने विभिन्न उत्तर दिए। जो लिखा और दर्ज किया गया है उसके बारे में 2 मुख्य विचार सामने आए। एक यह कि जो कोई भी व्यक्ति मंदिर की दहलीज तक पहुंचने की शारीरिक क्षमता नहीं रखता है यह छूट प्राप्त है, और दूसरा यह कि जो कोई भी व्यक्ति मंदिर से 18 मील से अधिक दूर रहता है वह छूट प्राप्त है।
यह मुद्दा और इसके विभिन्न समाधान निस्संदेह फसह के समय यीशु की मृत्यु के सुसमाचार वृत्तांतों में एक भूमिका निभाते हैं। हम जानते हैं कि यहूदी, यानी वे यहूदी जो यहूदा में रहते थे और इसलिए मंदिर के करीब थे, वे एक ही तरह के नियमों का पालन करते थे, जबकि यहूदी जो यहूदा के थे वे एक ही तरह के नियमों का पालन करते थे। गलील, जहां यीशु और उनके शिष्य थे, ने एक और परंपरा का पालन किया, और यह उस लंबी दूरी के कारण था जो गलीलियों को यरूशलेम से आने जाने के लिए तय करनी पड़ती थी। गलीलियों ने फसह की पूर्व संध्या पर अपना फसह भोज भी मनाया, फसह से एक दिन पहले इसमें शामिल रसद के कारण। उन्होंने दक्षिण में अपने यहूदी भाइयों से पहले ही अपने घरों से खमीर निकालना शुरू कर दिया होगा, इसलिए जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था और प्रभु के भोज के बारे में उस फसह के सुसमाचार के वृत्तांतों में हमें जो कुछ समस्याएं मिलती हैं उनका पता इस परिभाषा से लगाया जा सकता है कि लंबी यात्रा का क्या मतलब है, फसह के समय का कितनी सख्ती से पालन करना था, और यहूदियों के विभिन्न समूहों ने इस दुविधा को हल करने के लिए क्या किया। अब मैं एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जिसके बारे में मुझे पता है कि कुछ लोग मुझसे पूरी तरह सहमत नहीं हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। मैं पहले ही यीशु और फसह के मामले पर बात कर चुका हूं, और जितना अधिक हम तोरा के बारे में सीखते हैं उतना ही अधिक हम पास्कल मेमने के वध और मसीह के क्रूस पर चढ़ने के बीच सटीक समानताएं देखते हैं, और प्रभु के भोज और फसह सेडर भोजन के बीच, जिससे हमारे संस्कार की परंपरा आती है। लेकिन समानता का एक और मुद्दा भी है, शुद्ध और अशुद्ध का मुद्दा, और वे लोग जिन्हें अशुद्ध होने के कारण भाग नहीं लेना चाहिए। यहां गिनती 9 में एक व्यक्ति जो अशुद्ध है वह फसह में भाग नहीं ले सकता, इसे बाद की तिथि तक टाल दिया जाना चाहिए। हम नए नियम में विकसित एक बहुत ही समान प्रकार की चेतावनी देखते हैं। सबसे पहले फसह और यीशु के बीच संबंध स्थापित किया गया है। यूहन्ना 6:53, इसलिए यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। 54, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसका है और मैं उसे अंतिम दिन जिलाऊंगा। 55, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा लहू सच्चा पेय है। 56, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में बना रहता है और मैं उसमें।
अतः जब आमंत्रण स्थापित हो जाता है और भागीदारी का कारण बता दिया जाता है तो उसके बाद हमें चेतावनी दी जाती है, वास्तव में यह मौत की धमकी होती है।
1 कुरिन्थियों 11:27, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लोहू का अपराधी ठहरेगा। 28, परंतु मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से रोटी खाए और कटोरे में से पिए। 29, क्योंकि जो खाता पीता है वह यदि देह का न्याय ठीक रीति से न करे तो अपने ऊपर दंड लाता है। 30, इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सौ भी गए हैं। मैंने अयोग्य मामले में पीने और खाने के बारे में कई तरह के अनुमान और रूपक कथन सुने हैं, और बेशक ये विभिन्न काल्पनिक व्याख्याएं आमतौर पर इसराइल, तोरह और यहूदियों के संदर्भ में कुछ भी नहीं है, जो कि बाइबल के किसी भी हिस्से को देखने के लिए एकमात्र उचित संदर्भ है। यह याद रखना कि फसह के भोज और प्रभु के भोज के बारे में सब कुछ तोरह द्वारा निर्धारित घटना है। दूसरे शब्दों में यह मानव निर्मित परंपरा नहीं है, केवल एक स्पष्ट रूप से बताई गई शर्त है जो किसी व्यक्ति को भाग लेने के लिए अयोग्य बनाती है, अशुद्ध होना। और निश्चित रूप से तोरह में फसह के भोज में अशुद्ध अवस्था में भाग लेने की सजा काट दिया जाना और काट दिया जाना है।
बाइबल में इसे ईश्वरीय दंड के रूप में परिभाषित किया गया है और कभी कभी इसमें मृत्यु भी शामिल है। स्वाभाविक रूप से तोरह के आदेश के समानांतर रब्बी संत पौलुस चेतावनी देते हैं कि जो लोग अयोग्य हैं, और मैं कहता हूं कि इसका मतलब है आमतौर पर अशुद्ध, और जो प्याला पीते हैं और रोटी खाते हैं वे बीमार और कमजोर हो जाएंगे और सो जाएंगे। सो जाना एक सामान्य बाइबल व्यंजना है जिसका अर्थ है मरना, और जैसा कि स्पष्ट रूप से संदर्भ यह स्पष्ट करता है कि यह ईश्वरीय प्रतिशोध है। आप बीमार नहीं पड़ते क्योंकि शराब और रोटी में कुछ विषाक्त है। क्या आप गिनती 9 के अध्यादेश और उसी चीज के नया नियम संस्करण के बीच इस कठोर और कड़े संबंध को देखते हैं? नया नियम बस यीशुआ को पास्कल मेमना बनाकर संदर्भ को जोड़ता है।
खैर, चलिए पद 15 पर चलते हैं। यह गिनती 9 का एक भाग शुरू करता है जो अग्निबादल प्रभु की महिमा के संचालन को समझाता है और यह भी बताता है कि इज़राइल की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। वास्तव में यह कुछ उसी की पुनरावृत्ति है जो निर्गमन में पहले शुरू हुई थी। इज़राइल ने मिस्र से माउंट सिनाई तक अग्नि बादल का अनुसरण किया था, क्योंकि वे लगभग 13 महीने तक माउंट सिनाई के तल पर स्थिर रहे थे। इसलिए अग्नि बादल को उनके आंदोलन को निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यह बदलने वाला था। घटनाओं के इस क्रम का अनुमान परिस्थितियों से लगाया जा सकता है। अग्नि बादल उन्हें मिस्र से सिनाई तक ले गया, फिर वह ऊपर उठा और उस पहाड़ की चोटी पर विश्राम किया जहां मूसा तोरह प्राप्त करने गया था, और कुछ समय तक वहां विश्राम किया। अब जब तंबू पूरा हो गया था, यह परमेश्वर के स्वर्गीय सिंहासन का एक प्रतिरूप था और नया और नवीनतम सांसारिक स्थान था जहां परमेश्वर मनुष्यों के बीच निवास करता था, तो इसने माउंट सिनाई को परमेश्वर के सांसारिक निवास स्थान के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया, जिसने स्वयं अदन के बगीचे को प्रतिस्थापित कर दिया था। इसलिए स्वाभाविक रूप से अग्नि बादल, जिसके बारे में हम अक्सर मूसा के माउंट सिनाई के शीर्ष पर चढ़ने के बारे में पढ़ते हैं, नीचे आया और तंबू पर विश्राम किया। दिन के समय सूर्य की रोशनी अग्नि बादल की चमक को कमोबेश छिपा देती थी, जिससे केवल बादल ही दिखाई देता था। लेकिन जब अंधेरा हो जाता था तो बादल के भीतर की आग रात के आकाश को प्रकाशित कर देती थी। क्या आपको वहां मौजूद होकर यह सब देखना अच्छा नहीं लगता? यह कितना शानदार नजारा रहा होगा और परमेश्वर के लोगों के लिए यह कितना आश्वस्त करने वाला रहा होगा जो अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहे होंगे। पद 17 से शुरू करते हुए हमें अभ्यास मिलता है। जब बादल उठता है तो इसराइलियों को शिविर पर हमला करना होता है, तंबू को नीचे उतारना होता है और अग्नि बादल का अनुसरण करना होता है। जब बादल रुकता है तो वे रुक जाते हैं, चाहे वह रात भर के लिए हो, एक सप्ताह, एक महीने या एक वर्ष के लिए हो। और वैसे यह नहीं कहा जा रहा है कि वे किसी एक स्थान पर अधिकतम एक वर्ष तक रुके और डेरा डाला। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि चाहे लंबे समय के लिए हो या थोड़े समय के लिए, वे अग्नि बादल का अनुसरण करते थे। अंतिम पद में कहा गया है कि प्रभु के संकेत पर उन्होंने या तो शिविर बनाया या शिविर तोड़ा। भ्रमित न हो, यह संकेत अग्नि बादल की गति या ठहराव है, कोई अतिरिक्त संकेत नहीं है। हमें इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि ईश्वर की उपस्थिति अग्नि बादल के साथ झुरी हुई इसराइलियों के लिए वास्तविक और मूर्त थी, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसराइल के लोगों ने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने उनके आदेश पर उनके लिए यह जटिल पवित्र स्थान बनाया। यह भी ध्यान देने योग्य है कि हमने पहले फसह से पहले बाइबल में अग्नि बादल के बारे में कभी नहीं सुना था। यह तब तक नहीं था जब तक कि ईश्वर ने अपने लोगों इसराइल को छुराया, वह उन्हें इतने अंतरंग और दृश्यमान तरीके से नेतृत्व करने के लिए उनके सामने प्रकट नहीं हुआ। और एक बार जब उसने उन्हें छुरा लिया और उसे इतना वास्तविक और उनके लिए यह स्पष्ट था कि वे आज्ञाकारिता से जवाब देंगे, ईश्वर नेतृत्व करते हैं, वे उनका अनुसरण करते हैं। जहां ईश्वर जाता है वे जाते हैं, जहां वह नहीं जाता वे नहीं जाते। जब वह रुकता है तो वे रुक जाते हैं, और जब ईश्वर संकेत देता है कि आगे बढ़ने का समय आ गया है तो वे आगे बढ़ जाते हैं। यह परमेश्वर के साथ हमारे चलने का एक सुंदर और उचित नमूना और प्रदर्शन है। यह सब अग्नि बादल की कल्पना और इसराइल के तंबुओं में रहने की अस्थाई निवास स्थान को नए नियम में मार्मिक रूप से आगे लाया गया है, ताकि हमें कभी भी संदेह न हो कि परमेश्वर के नमूने समाप्त हो गए हैं या अप्रचलित हो गए हैं। हम यीशु के रूपांतरण को बादल में घटित होते हुए पाएंगे, और फिर बाद में जब वह उठे और स्वर्गारोहित हुए तो यह बादल में था, वह बादल में वापस आएंगे। दो प्रमुख प्रेरित संत पौलुस और पतरस लगातार मानव शरीर के रूपक का उपयोग करते हैं, जिसकी तुलना एक तंबू से की जाती है, एक अस्थाई निवास स्थान जिसे हमारे वादा किए गए देश
स्वर्ग में पहुंचने पर अविनाशी और स्थायी आवास से बदल दिया जाएगा। ये सभी उदाहरण और पैटर्न और रूपक जिन्हें हम यीशु और प्रेरितों को नया नियम में उपयोग करते हुए देखते हैं, वे नए और मनमाने यादृच्छिक या मनमाने नहीं हैं। उनका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि वे सीधे तौर पर तोरह ईश्वर के वचन को संदर्भित करते हैं, और उद्देश्य भले ही वे इसे पूरी तरह से पहचान न पाए हों, मसीह में नवीनतम वाचा और तोरह में प्रकट की गई पिछली वाचाओं के बीच उस मजबूत संबंध को बनाना था।
हम अगली बार अध्याय 10 शुरू करेंगे।